संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन मित्रे हमारे ध्यान। पेज नंबर 159 सबसे नीचे की तीन पंक्तियां। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि 80-81वीं गाथा में बताया गया मोह के नाश का उपाय अध्यात्म शास्त्रों के गहरे अध्ययन की अपेक्षा रखता है। शास्त्र स्वाध्याय मोह के नाश का उपायांतर है। इस गाथा में उक्त उपायांतर पर विचार करते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि वो तो बहुत कठिन रास्ता था, तो दूसरा कोई सरल रास्ता बताएंगे, लेकिन इसकी उत्थानिका में ये लिखा है कि मोह छपनो उपायांतरम आलोचयति। मोह के नाश का अब कोई दूसरा उपाय की बात करते हैं, और इसमें ये कहते हैं कि ये उसी का सहयोगी है, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं है, वो कहते हैं कि जब द्रव्यगुण पर्याय को अनंत से जानना है, तो द्रव्यगुण पर्याय को कहां से जाने? द्रव्यगुण पर्याय को जानने के लिए हमें शास्त्रों का ही अध्ययन करना पड़ेगा ना, यानी उपायांतर की अपेक्षा रखता है। ये शब्द पड़े हैं, देखो इसकी जो टीका है, पहली तीन पंक्तियां पढ़ता हूं, गाथा भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं। जिन शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वाले का नियम से मोह के उपचय का क्षय हो जाता है, इसलिए शास्त्रों का सम्यक्तया अध्ययन करना चाहिए। 80वीं गाथा में द्रव्यगुण पर्याय स्वभाव से अनंत के ज्ञान द्वारा जो आत्मा का उसी प्रकार का ज्ञान मोह क्षय के उपाय के रूप में बताया गया था, वह वस्तुतः इस 86वीं गाथा में प्रतिपादित उपायांतर की अपेक्षा रखता है। और ये क्या है? स्वाध्याय करना चाहिए। अब अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए कि अध्यात्म तुमने अपनी तरफ से लगा दिया, तुम्हारी रुचि है, इसलिए कि भाई जिसमें उन द्रव्यगुण पर्याय का वर्णन होगा उन्हीं शास्त्रों को तो पढ़ोगे, कि जिसमें राम सीता की कहानी होगी उस शास्त्र को पढ़ोगे। राम सीता की कहानी वाला शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस काम के लिए हमें द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर अरहंत का स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर अरहंत के द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा, फिर आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप जानना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जिन शास्त्रों में होंगी उन्हीं शास्त्रों को जानना पड़ेगा ना। अब बात ऐसी है कि उनने खुद इस शास्त्र में इन सब बातों का स्पष्टीकरण किया है। वो कहते तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ही तुम शांति से पढ़ोगे तो द्रव्यगुण पर्याय भी आ जाएंगे, अनंत का स्वरूप भी आ जाएगा, सर्वज्ञता वितरागता की बात भी आ जाएगी, और वो सब बातें आ जाएंगी कि जो हम मोह के नाश के लिए जिनको हम जरूरी बताते हैं। क्या स्वाध्याय की उपयोगिता का इससे बढ़िया और कोई छंद आपको नहीं मिलेगा। पढ़ो इस गाथा को पढ़ो।
यदि मोह बचे हो तम सत्यम समदी गव्यम तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष आजिन शास्त्र से द्रग मोह चय हो इसलिए स्व स्वाध्याय करना चाहिए।
वहां भी द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात कही थी और यहां भी वहां पर दीर्घ मोह क्षय हो यही शब्द का प्रयोग किया था कि उनका दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होगा और यहां भी यही बात कही है। हमको जब कहीं असुविधा सी महसूस होती है तो हम कहते निबद्ध चारित्र की बात है, खासकर जो पिछली गाथा में आया ना करुणा भाव, तो करुणा भाव बुद्ध चारित्र का दोष है, चारित्र का दोष है। तो व्यवहार चारित्र से तो उसे कहा ही है, व्यवहार चारित्र में कहां दोष है। जिस चारित्र की आप बात करते हो वो निश्चय चारित्र तो सम्मान दर्शन के बिना होता ही नहीं है, है ना। और जैसी श्रद्धा माने श्रद्धा ठीक होती है तो आचरण ठीक होता है ना, तो इसमें भी पहले श्रद्धा ठीक होनी चाहिए ना काय में, इसमें कि हम मार जला सकते हैं कि नहीं, माने हम ये निर्णय किए बिना ही मार जला सकते हैं कि नहीं। यदि ये निर्णय करना चाहें और ये बोलें कि देखो हमें मारना चाहिए कि बचाना चाहिए, कि सुखी करना चाहिए कि दुखी करना चाहिए, तो आप सीधी सच्ची बात है कि आपके अंदर में बेईमानी है और आप उससे यही कहना, कौन कहेगा कि तुम्हें मारना चाहिए, कौन कहेगा कि दुखी करना चाहिए, है ना। वो सब यही कहें सुखी करना चाहिए, लेकिन मूल मुद्दे की बात है कि मार बदला सकते हैं कि नहीं, सुखी दुखी कर सकते हैं कि नहीं, मुद्दे की बात है, बात ही नहीं करते हो। यदि एक नक्की हो गया कि हम मार जला नहीं सकते हैं और सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं, तो फिर मारने का भाव और बचाने का भाव और सुखी करने का भाव और दुखी करने का भाव, दोनों भाव एक समान ही अज्ञान नामक पाप हो जाएंगे। अज्ञान माने मिथ्यात्व नामक पाप हो जाएंगे। अब दोनों एक से हैं, जब एक कह रहे हैं तो उसका अर्थ ही है, चाहे मारने के भाव करो चाहे बचाने के भाव करो, तो दोनों एक से पाप क्यों हो, एक से तो पुण्य बनता है, जिससे पुण्य बनता है उसे पुण्य कहो, जिससे पाप बनता है उसे पाप कहो। ये कहते मिथ्यात्व तो दोनों एक से हैं, और मिथ्यात्व तो पाप है कि नहीं है, और मिथ्यात्व तो ऐसा पाप है जो हमें निबोध में ले जाता है, तो निबोध में ले जाने का काम तो दोनों ही करेंगे। माने जो वो मुद्दे की चीज है उससे हम ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब ये बात आई कि नहीं साहब आप करुणा को ही बिल्कुल उखाड़ के फेंकना चाहते हो, अरे करुणा में तो इतनी ताकत है कि उसे कोई उखाड़ के फेंक ही नहीं सकता। आपने गली गली में उसके पक्ष वाले बैठे हैं, जैनियों में नहीं, अजैनियों में, मुनिराजों में, गृहस्थों में, सब में, उनमें एक तुम भी शामिल हो जाओगे। उसमें तो बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है उसे क्या, और हमारे जीवन में भी पाई जाती है वो। हम लोग भी तो ऐसी प्रकृति के तो नहीं है ना कि हम किसी को बचाने की जगह मारने का भाव करें, कि किसी को सुखी करने की जगह दुखी करने का भाव करें। भाव करें क्या, होता है वो तो भूमिका में होता है। गजब की बात तो है, ज्ञानी की भूमिका में भी होता है, इसलिए सामने वाले को बहुत बल मिल जाता है। मुनिराज की भूमिका में भी होता है, बल मिल जाता है। अब वो तो उनको करुणा आई ये हुआ, लेकिन करुणा सही पॉइंट पे आनी चाहिए ना। एक दिन मैंने खेमचंद भाई का एक उदाहरण आप लोगों को बताया था, कमंडल के पानी का, है कि वो कमंडल का पानी क्यों नहीं पिलाने का उन्हें भाव आएगा, कि शास्त्र में लिखा है नहीं पिलाना चाहिए, कि वो पीने लायक पानी नहीं है इसलिए नहीं पिलाना चाहिए। उनको ये है कि ये जीव तो मिथ्या दर्शन अज्ञान संयम से दुखी है, ये पानी की कमी से दुखी है ही नहीं क्या, तो इसलिए करुणा भी उनको मिथ्यात्व से बचाने के भाव की आएगी, उसके वो तो उपदेश के अलावा और कुछ हो नहीं सकती है। और वैसे भी वो नन्हे दिगंबर हैं, उनके पास कोई परिग्रह है नहीं जिसमें से वो कुछ और करुणा ऐसी कुछ करके कहें। जितने भी जीव सामने से दुखी दिखते हैं अस्पताल में, देखो अपन लोग भी जाते हैं, कोई डॉक्टर जाएगा तो वो कहेगा ये जुकाम से दुखी है, एक कैंसर से पीड़ित है, ये हार्ट अटैक है, इसमें ये है। और तुम लोग जाओगे तो क्या कहोगे? बहुत मैं बोलता हूं तुम पंडित नाम के प्राणी हो गए ना, उस नाम से मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जाते देखो पुण्य का उदय देखना हो तो सारी दुनिया में देख लो, और पाप का उदय देखना हो तो अस्पताल में देख लो। सब दुखी हैं, काहे के कारण? पाप उदय के कारण। तुम्हें उदय दिखता है, तुम कैंसर से दुखी हैं, हार्ट की बीमारी से दुखी हैं, जुकाम से दुखी, दिखते ही नहीं। बिल्कुल होता ना, अभी अपने यहां बैठने वाले प्रश्न सुनने वाले में हरेक की ये प्रवृत्ति होगी, और समाज में भी अपनी नहीं, जो अपने को नापसंद करते हैं उन लोगों की भी यही प्रवृत्ति होगी। हर जगह पुण्य पाप का खेल देखते ना, क्या कैसा पुण्य पाप का उदय है? वो तो अपन पढ़ते थे कि क्षण में ऊपर खड़े, क्षण में नीचे खड़े, लेकिन हर्षद मेहता को देखा, और लोगों को भी बहुतों को देखा ना अपन ने, क्या आज और कल और फिर कल, तीनों दिन अपन ने देखे हैं ना लोगों के। मेरे कहने का मतलब यह है, हम पुण्य पाप पे आते हैं। अब्बू मुनिराज समझ लो पहले सम्मा दर्शन हुआ, अपन तो सम्मा दर्शन है होता ही है, यही मान के ही तो बात करेंगे ना। सम्मा दर्शन हुआ तो उन्होंने नक्की किया कि कोई किसी को मार जला नहीं सकता है, कोई किसी का सुई दुखी नहीं कर सकता है। फिर निरंतर इसका अजपा जाप चला, क्यों कौन सा चला अजपा जाप? जो ईश्वर के प्रवचन में आया था ना, सुना ना अजपा जाप का अर्थ। फिर क्या चला कि अंदर से धारणा अंदर से मजबूत हो गई कि दुख का कारण ऐसे में छात्र ज्ञान अब 24 घंटे में जिनकी एक चित्त की भूमिका है उनके लिए मिथ्या दर्शन के कारण ये दुखी हैं ऐसा भाव आना, यानी वो दया नाम का भाव वो अच्छी चीज नहीं है वो जानते हैं, फिर भी दया नाम का भाव आएगा तो इसी टाइप का आएगा, उसका सही इलाज करने का आएगा ना। एक ऐसा है, एक आदमी को भयंकर बीमारी है, कैंसर है। अब उसको कहते हैं कि ये यदि हमने दर्द की दवाई दे देंगे तो तत्काल का दर्द तो ठीक हो जाएगा, रोना धोना तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो कैंसर नाम की बीमारी और तेजी से बढ़ेगी, उसको ये दवाई और उत्तेजना देगी, समझ रहे ना? मैंने वो कुछ नहीं करेगी, बाद में नहीं कह रहा हूं, सुनना, ऐसा भी होता है ना, ये डॉक्टर सब लोग अपनों बताते हैं नींद की गोली दे देंगे आराम से सो जाओगे, लेकिन कुछ दिनों में फिर नींद की गोली आपको ऐसी हालत हो जाएगी कि बिना नींद की गोली की नींद नहीं आएगी, और कुछ दिनों बाद वो नींद की गोली जहर का काम करने लगेगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो ऐसी गोली देने का भाव डॉक्टर को कैसे आएगा? इमरजेंसी में तत्काल कोई वो कुछ कर ले तो अलग बात है, ऐसे में मुनिराज तो डॉक्टर है ना, तो उनको ऐसा भाव क्यों आएगा? वे कदाचित थोड़ी अनुकूलता बरत सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बात ध्यान से सुने, क्यों अपन लोगों को भी होता है ना कि भाई अपन को समझाना है तो मानेंगे नहीं, भूखा है वो खाना मांग रहा है और अपन उपदेश दे रहे हैं तो कहेंगे पहले से भोजन करा दूं कि चल भाई भोजन कर शांति से बैठ, उसके हृदय में थोड़ा ऐसा भाव अपने प्रति हो जाए कि ये मेरे हितेशी हैं, मेरे को सहयोग करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें हम समझाएंगे तो वो सुनेंगे भी और समझेंगे भी, क्यों? और फिर उसे हमें बताएं कि बेटा तुम बहुत परेशान हो, कुछ नहीं हो, पांच साल का हम तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर सकते हैं, बोलो, फिर बाद में तुम अपना करना पड़ेगा, तो क्या कहेगा? क्या कैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? हम तुमसे करने की बात क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारा पक्का इंतजाम कर देते हैं ना, क्यों? बनी बनाई मिल जाएगी, बनानी भी नहीं पड़ेगी, मांगनी भी नहीं पड़ेगी। कि क्या करना पड़ेगा? कि तुम सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। क्यों क्यों बोलो, ये अपना ये स्वरूप विद्यालय का यही तो है और क्या है? यदि एक दसवीं का आदमी है, आपकी उम्र का है, और वो यदि परेशान हो रहा है, उसके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या दया आएगी, कैसी आनी चाहिए? क्यों अकेले खाने की व्यवस्था नहीं करोगे और तुम कोरी दया दिखा के पढ़ने की बात कहोगे तो हवा खा के तो वो जिएगा नहीं। क्यों हवा खा के तो जिएगा नहीं, तो वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो वो तो कैसा, मैं पढ़ूंगा नहीं, एक एक बात आपकी मान सकता हूं, एक नहीं मानूंगा, चलेगा? क्यों वो नहीं, कौन कि खाने की तो मान सकता हूं, पढ़ने की नहीं। अच्छा उल्टा कर लो, कि पढ़ने की मान सकता हूं, खाने की नहीं, तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि तेरे पास व्यवस्था है ही नहीं, तो तुम चार घंटा उसमें बिगाड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि तुम 24 घंटा पढ़, ध्यान से सुनना, हम तो चाहते हैं कि 24 घंटे पढ़, इसके लिए दे रहे हैं। वो मुनिराज ने अपने पे भी करुणा की, बहुत जोर की भूख लगी थी तो अपने पे भी करुणा की, और वो बहुत गहराई से जिनवाणी का अध्ययन करना चाहते थे, आत्मा का ध्यान करना चाहते थे, तो जाके आहार को जाके दो रोटियां इस शरीर को डाल दी, रूखी सूखी, और फिर 12 घंटे को निश्चिंत हो गए, 24 घंटे को निश्चिंत हो गए, स्वाध्याय करने लगे। तो अपने लिए भी तो वही किया। अब हम वजन देते हैं वो जो स्वाध्याय और सामाजिक करने लग गए उस पर, और तुम खाने की बात में वजन देते हो। यदि हम जाकर, अब तुम कोई जाए तो सारे देश में ये प्रेरणा दे दें कि हमें विद्यालय में तुम भर्ती होने आओ, अच्छे प्रतिभाशाली छात्र आए, तो उनका भी भला होगा और उनके माध्यम से समाज का भला होगा और फिर धर्म का भी प्रचार होगा। तो एक तरह से हम भगवान महावीर के भी सहयोगी, सचमुच भगवान महावीर की वाणी हमें उपलब्ध हो गई हो और वो हम जन जन तक पहुंचाएं, तो वो एकदम महावीर के सहयोग का काम नहीं होगा, तो इसमें कोई अभिमान की बात है? क्यों शांति जी बोलो, कि क्या काम कर रहे हम, ये काम कर रहे हैं। यदि ऐसा भाव होगा तो आप में इस काम के प्रति हल्कापन, अच्छा अच्छा मास्टर होकर धर्म पढ़ाते हो, धर्म पढ़ाते हो सबसे ज्यादा दीनहीन मास्टर, क्यों? जो सबसे ज्यादा गौरवमयी चीज है उसे हमने सबसे ज्यादा दीनहीन बना दिया है। सारे देश में हम जाकर के ये कहेंगे कि तुम चलो, तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छे विद्वान बन जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे द्वारा समाज का होगा, इज्जत मिलेगी, सब होगी, ये सब बातें मतलब समझाएंगे, तो भोजन की बात कोई पूछेगा कि भोजन का क्या होगा, तो कहेंगे भोजन की व्यवस्था सब होगी, कोई भूखा रख के नहीं पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करो। लेकिन हम जाके ये नहीं कहेंगे हम आपको खाने की व्यवस्था की है बहुत बढ़िया, इसके लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम सारे देश में जाएंगे, घूमेंगे, अपील करेंगे, बोलो। मैंने वो बात गौण ही है ना, मैं क्या कह रहा हूं, वो दया गौण ही रही ना, वो रोटी वाली दया गौण रही ना, वो पढ़ाई वाली दया मुख्य रही ना, तुम बोलो, तुम खुद सोचो। अब तो तुम वो अपना ये कहानी है ना, आप कुछ भी कहो, मैं कौन सी, वो लाल वाली है, गांठ खोल देखी नहीं है ना, है ना, उसमें सबके पल्ले लाल लाल बिना को ही नहीं जाते भाई है। तो तुम्हें इतना महान काम करके उसको सिर्फ ये जो मेरे ये कहते हैं ना परमात्मा है बबलू हैं, ये सब लोग कहते हैं कि दादा इस सबको समाज में हम ऐसे आंकड़े लिख लिख के छापेंगे, हमारा अध्यात्म कहता है ऐसे छाप छाप के भेजेंगे कि देखो इतने विद्यार्थी आईएएस हो गए, इतने विद्यार्थी प्रोफेसर हो गए, इतनों को 5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही, इतने को 3 लाख मिल रही, इतने को 2 लाख मिल रही, तो फिर इससे लड़के आएंगे। मैंने आज तक तो उन्हें छापने नहीं दिया वो पर्चा, क्यों? मुझे ये नौकरी के लोभ पैदा करके नहीं चाहिए। तुम भगवान बनोगे, तुम सत्य जैन धर्म के मर्म को जानोगे, क्या कैसा वो नौकरी कि तुम नौकरी कभी नहीं करोगे, तुम तो मालकी करोगे। अध्यापक नौकर नहीं होते हैं, गुरुजी होते हैं। कितनी हल्की बात करते हो तुम, क्या समझे ना, वे गुरु होते हैं। या तो हमारे यहां देवसाय गुरु वाले को गुरु कहा है, और या फिर इन अध्यापकों को गुरु कहा जाता है। अंग्रेजी भी पढ़ा है तो अभी गुरु कहते हैं ना, महाराष्ट्र में तो हर एक को गुरु जी कहते हैं ना। माने इतने महान काम को इतने हल्के शब्दों से उपयोग क्यों करना? फिर मैं कहता हूं उनसे कि जब कोई पूछे कि साहब बाद में क्या करेंगे करके 5 साल पढ़ के आजीविका कैसे करेंगे, तो वो भी बता दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐतराज नहीं है। लेकिन वो मैन झंडा लेके नहीं चल सकता ना। यदि मेरे से कोई पूछता है कि इनका भविष्य क्या है, तो पहला बात होना चाहिए इनका भविष्य मोक्ष है, बोलो करना है? क्या फिर वो सब बताना, आप रोटियों की बात भी बताना। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बताना, लेकिन पहला नंबर तो नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। असली चीज ये है और बाकी की चीजें 2 नंबर गुण हैं। समय सार में सोने बनाने की विधि लिखी है, पढ़ी क्यों ने? नहीं तो बना लेते, फिर क्यों नहीं बनाई? गुरु जी पहले आप बना लेते किसी ने आज तक बना नहीं पाई, लिखी है। अब तो समय सार की बात सच्ची माने कि झूठी? तो टीकाकारों को बड़ी समस्या आई कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो उनने तो कह दी कि उचित वो हुए, ऐसा लिख दिया जयसेनाचार्य ने, तो साथ में पुण्य का उदय भी होना चाहिए तो बनेगा। बोलो अब बस तुम नहीं बने तो समझ लो तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है। मतलब क्या करें आप समझ गए ना आपकी? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसमें विधि मोक्ष मार्ग की जाने की विधि लिखी है, आप समझ गए ना? और वो ही तुम्हें पढ़ोगे, वो ही तुम्हारे कोर्स में बताई गई है। हर एक पुस्तक ये बोलती कि नहीं बोलती है? बोलिए। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्व तत्वाना। मंगलाचरण में यही मोक्ष मार्ग की बात कही कि नहीं कही? फिर जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख दें भय बंद, ताते दुख आदि और सुख कार्य गुरु जी करना करके कहते हैं। जहां है जहां है उन्होंने मोक्ष मार्ग के लिए ही वो शास्त्र लिखा है, बताया कि नहीं बताया? उसे क्या नाम है, हमें शर्म आती है। वो उसको यह बिल्कुल रद्दी सद्दी चीज हो जहां कोई जाने नहीं चाहता है, तो क्यों? हम तो गौरव के साथ उसको आगे रखें। अरे ये बातें भी बताएंगे, तो ये बातें तो वो अपने आप पूछेगा। अच्छा हमने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया, आप सब एकदम हो गए ना अप टू डेट, मान लो शास्त्री फाइनल हो गए, तो सबको मोक्ष मार्ग ख्याल में आया क्या? नहीं, मैं समझता हूं 99% नहीं 100% को आया है, यही मोक्ष मार्ग बताया, पूरी मर्म ख्याल में आया कि नहीं आया वो जाने दो, लेकिन मोटा मोटा तो ख्याल में आया ना, तो हमारा काम तो खत्म हो गया। अब वो नौकरी का और आजीव का और पेटी का क्या, कल आप तो बंद कर दोगे, कल से भोजनालय हमारा, आप तो कहते हो कि हम एक दिन भी नहीं ठहरने देंगे, जाओ बस तुम हो गए छुट्टी, क्यों समझिए। तो उसकी क्या गारंटी दी थी तुमने, बहुत समझाया था हमारे लिए, तो मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे पुण्य पे भी निर्भर करता है, उसमें वो इतना साथ में और लगेगा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक बात मैं आपको बताऊं, सच्ची घटना, मुझे आज तक उस पर दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। पहला बैच आया था यहां, 13 आदमियों का बैच था, जिसमें जतीश भाई, अभय कुमार जी सब थे। तो एक विद्यार्थी था, वो मऊ का था, उसका नाम था कमलेश, आप जानते होंगे, कोई बैठा क्या वहां का, उनका लड़का बैठा है क्या, हो सकता है, कोई इस बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊं ना कि वो भी पढ़ के शास्त्री हो गया, बहुत अच्छा प्रवचनकार, इतना वैराग्य भरा, शांति से बैठ के बिल्कुल मुद्रा में और प्रवचन करते, सब बात की खुशी। फिर बोले, मेरे से बोले कि मुझे बंबई भेज दो निकाय के लिए, कि हीरे का काम सीखने के लिए। तो मैंने कहा कि भाई हीरे का काम कोई कौन है, किसके पास सिखाएगा, कौन सीखेगा, कैसे सीखेगा। बस इनने मैदान छोड़ दिया। किसने मैदान छोड़ दिया, किसने आपको कहा था कि आपको हीरे का, कि हमने तो गांव में ये बताया था कि हीरे के काम सब सिखा देंगे, वो हीरे का बड़ा व्यापारी बना देंगे, व्यापारी करा देंगे। अब उसके दिमाग में ये घुस गया, किसी ने कह दिया होगा, किसी व्यक्ति ने इसे कह दिया होगा कि वहां जाते हैं तो वो वहां हीरे का काम सिखा देते हैं, ख्याल में आई ना। और फिर वो लोग जब सब जवेरी बन जाते हैं, शायद परमात्मा वहां गया होगा उस वक्त सीखने वहां पर, तुम पहला व्यस्त था या तुम बंबई में ही थे ना, है ना। तो किसने कहा आपको, किसने हमको, किसी ने नहीं कहा, है ना? हमने भी किसी से नहीं कहा कि तुम परमात्मा को ले जाओ, कि तुम परमात्मा को सिखाओ, ये भी हमने किसी से नहीं कहा। बल्कि गोदका जी एक कह के गए थे विदेश मेरे से कि इसे कहीं भेजना नहीं, मैं आकर के इसे पढ़ने का काम सिखाऊंगा, ये कह के गए थे मेरे से कि कहीं भेजना नहीं। रतनलाल जी उठा ले गए, शांति भाई के यहां रख दिया, और वहां उनने किया। मैंने किसी को एक शब्द नहीं बोला, उन लोगों को धन्यवाद तक नहीं दिया आज तक मैंने, आप ये समझ लो, किन्ने जिनने सिखाया गया, सहयोग किया, अपने घर रखा, उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। क्या दिया वो मैं बताना नहीं चाहता, है? है? कोई अकेले में पूछेगा तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन भरी सभा में नहीं बताना चाहता। तो मैंने उनसे कभी तुमको किसने कहा था, हमने तुमको विद्वान बनाने के लिए कहा था, तो तुम एवन विद्वान बन गए, तुम्हें कुछ कर कसर है नहीं, है? और अब तुम अपना काम का तुम पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, हमारा सहयोग करो, इनको करो, गांव गांव में जरूरत है और जो भी उचित है, अपने तुम्हारे योग्यता के अनुसार, पुण्य के अनुसार जो तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, सब काम होगा। और सभी विद्यार्थी आज तक रहे ही है ना, करते ही रहे ना, उनने भी कई जगह किया काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दिमाग में घुस गया कि जोनी बन जाएंगे, जोनी बन जाएंगे, जोनी बन जाएंगे। अरे मैंने कहा ये तो कोई ले जाकर के बनाएगा तो मैं उसे नहीं बनाने दूंगा, क्या बात कर रहे तुम, यहां हुआ था ऐसा। अब बहुमल जी भंडारी मौजूद हैं, जिंदा हैं, वो वहां पर अपने गांव में 85-90 वर्ष के होंगे, उनने यहां पर महावीर जी क्षेत्र का एक मकान है जोरी बाजार में, तो वो मकान किराए से लिया था 50,000 रूपये महीने का। तो उसमें उन्होंने कहा कि उनकी बिमल की एजेंसी खोलूंगा, बिमल समझते हो कपड़े का कोई शूटिंग वूटिंग शटिंग होता है। तो मुझसे कहा कितने विद्यार्थी निकल गए आपके, मैंने कहा 13 तो निकल गए, 13 साल निकल जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो 10-15 को तो मैं लगा दूंगा ठिकाने। क्या लगा देंगे, क्या 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 ठिकाना लगा देंगे? मैं अपनी एजेंसी में रख दूंगा, सेल्समैन बना दूंगा, कोई आजीविका की चिंता नहीं। मैंने कहा यदि तुमने एक को भी बनाया तो सबसे बड़ा शत्रु में तुम्हें नंबर एक में लिखूंगा। क्यों? हम बना बना के विद्वान बना के तैयार करें, नैतिक दृष्टि शिक्षा सिखाएं, ईमानदारी से रहना, काम करना, सब बढ़िया है, तुम्हारे लिए सेल्समैन तैयार कर रहे हैं हम। हाँ सेठ जी, तुम जो तनख्वाह दोगे ना वहां सेल्समैन के लिए, वो तनख्वाह इनको दो और ये समाज में धर्म प्रचार का काम करेंगे, काम तुम्हारी दुकान पे नहीं आए। आप समझ रहे ना, हम तो उसमें से, हम क्यों ऐसा करेंगे है? जब वो ये है ना कानपुर वाले राजू भाई, तो वे आए तो हमारे एक विद्यार्थी हमारा पढ़ा था, बहुत अच्छा होशियार था। क्या नाम था भैया? अनुभव, बहुत होशियार था, जनपद विद्या विज्ञान का संपादक था, देखता था, काम करता था, बहुत बढ़िया प्रवचन करता था, क्लास लेता था। उसने अपनी लड़की की शादी कर दी, ले गए और वहां पर दुकान खुलवा दी और बनियाने में बेचने लगा वो। हमने उन्हें भी बहुत डांटा था, कही तुम क्या कर रहे हो, और खुद प्रवचन करते और उसे श्रोता बनाते, जबकि वो उन्हें 20 साल पढ़ाता तो भी उसकी बराबरी के वो नहीं हो सकते थे। फिर ये आए चौधरी प्रदीप जी संजीव गोदास, हम अपनी लड़की के शादी करना चाहते हैं। सच्ची घटना है, साथ की गद्दी पर बैठ के उसकी साक्षी पूर्वक कह रहा हूं। मैंने कहा एक नोड़ ने एक किया, तुम दूसरा ये करो। हम तैयार करें, मुश्किल से तैयार होते हैं, अपने काम करने में सहयोग करते हैं, और तुम एक एक उठा उठा के ले जाओ। नहीं चलेगा। तो उनने कहा कि नहीं, मैं आपको वचन देता हूं ये काम किसी कीमत पर नहीं छुड़ाऊंगा, ऐसा मुझे वचन दिया। तो मैंने कहा फिर मैं तुम्हें समर्थन देता हूं। फिर मैंने वो बुलाया, संजीव आया कि दादा ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा क्या करोगे बोलो, कि मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा, आज तक नहीं गया। देखो आप समझ रहे ना, नहीं गया, अपना काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। कल फिर पूछा मैंने, बात आई उसने सुनाया, कल बार मैंने नहीं पूछा, वो खुद ही सुना के गया। तो मैंने एक दफे याद दिलाई शांतिलाल जी के, बेटा जिंदगी भर यही काम करना। तो उसने मुझे कसम खा के कही कि दादा आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं तो यही काम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मेरे को दूसरा, एक मिनट भी मैं अपना उपयोग दूसरे काम में नहीं लगाऊंगा। बहुत ऑफर आए, एक कारखाना डाल दो, एक ऐसा कर दो, फिर अपने कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर अपने आप पैसा आता रहेगा, फिर ऐसा होगा। मैंने कहा नहीं, अभी मैं सोचना तो पड़ेगा ना, एक कारखाना डालो, मैं इतना समय भी इसमें खराब नहीं करना चाहता। तुम्हें ऐसे महाभाग्यशाली हो गए, ऐसे अध्यापक तुम्हें मिले हैं जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, आप समझिए ना। मैंने कल कहा था परमात्मा यहां कि अपने माँ बाप को, भाई बहन को, सबको पढ़ाना, मैंने खुद का उदाहरण देके कहा था। एक लड़का मेरे पास आया कि दादा मैं प्रवचन करता हूं तो मेरे माता पिता भाई भाभी बच्चे उनके सब बैठते हैं। चाचा मैंने बहुत पीठ ठोकी कि बेटा बहुत बढ़िया काम करते हो, एक तो मिला, एक तो मिला। ऐसे शुभ समाचार आप लोग मुझे सुनाएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, समझे ना। और उसमें कोई रस नहीं है कि मैं यहां ऑफिसर हो गया, वहां पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। क्या कर, उसमें क्या दम है, जो ये वस्तु का स्वरूप है। ये गाथा कौन सी चल रही है अपनी, स्वाध्याय करना चाहिए, देखो है ना। तो अभी अपन पढ़ ही रहे थे ना, एक दफे मैं पहले टीका पढ़ लेना चाहता हूं, फिर इसके बारे में मुझे कहना है, बहुत बातें करूंगा तो वे बातें मैं जानता हूं, तुमने कई दफे सुन ली होंगी मेरे ही मुंह से, फिर भी एक दफे तुम्हें कहूंगा, ख्याल में है ना, क्योंकि वो बातें बहुत बढ़िया हैं और तुम्हें ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। लेकिन पहले एक दफे टीका पढ़ लें। अस्सीवीं गाथा में मिल गया, द्रिगुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा जो आत्मा का उसी प्रकार का ज्ञान मुहे छय के उपाय के रूप में बताया गया था। देखो, यत किल द्रिगुण पर्याय स्वभावेन अरहतो ज्ञानाद आत्मनः तदा ज्ञानम मोह क्षपणो उपाय रूपेण प्राक प्रतिपन्नम तत् खलु उपायांतरम इदम अपेक्षित। संस्कृत में देखा ना क्या लिखा है कि वो जो हमने तुम्हें बताया था अस्सीवीं गाथा में, उसी के सहयोगी के रूप में हम इसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये अथवा वाला नहीं है कि ये करो या अथवा ये करो। बहुत पहले एक आध दफे मैंने भी वैसा अर्थ किया है, क्या कि एक दूसरा उपाय है, लेकिन मैं तो मजाक में कहता था कि दूसरा है माने क्या कि हम अध्यक्ष पढ़ाने गए और फूल घंटा भर तक समझाया और नहीं समझ में आया, और फिर कहा समझ में आया कि नहीं आया नहीं आया, तो हम कहते थे कि तत्वा सूत्र का स्वाध्याय करो, ये शास्त्र पढ़ो, इसमें मिलेगा ये। मतलब अब क्या करें, हमारे समझाने से समझ में नहीं आया तो ये शास्त्र पढ़ो, इसमें फायदा आएगा समझ में। तो वो भी वास्तव में तो ये ऐसा ही था जो मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन ये उपायांतर नहीं है कि दूसरा उपाय वो नहीं है, ये तो कहते उसका सहयोगी उपाय है, क्योंकि अभी समस्या हल कहां गई, द्रिगुण पर्याय वो समझो, लेकिन कहां समझे, कैसे समझे, कौन समझाएगा, इसका किसी का जवाब नहीं मिला ना, तो वो कहते हैं स्वाध्याय करो, यानी उसी के सहयोगी के रूप में हमें बात बता रहे। अब इसमें ये भी निर्णय हो गया कि उस शास्त्र पढ़ो और वे शास्त्र पढ़ो जिसमें द्रिगुण पर्याय की बात हो, अरहंत के द्रिगुण पर्याय की बात हो, अपने आत्मा के द्रिगुण पर्याय की बात हो, ये शास्त्र पढ़ो। इसमें से मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट है कि नहीं है, बोलिए। सर्वज्ञ कथित होने से अब वो शास्त्र की महिमा, जो शास्त्र पढ़ने को आपसे कह रहे हैं वो शास्त्र कैसा है वो बता रहे थोड़ा। सर्वज्ञ कथित होने से पूर्णतः अबाधित है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, तो भगवान सर्वज्ञ हैं और नीतरागी हैं, तो झूठ दो कारणों से बोला जाता है, या तो ज्ञान नहीं हो और फिर बताना चाहें तो अज्ञान के कारण बोला जाता है, या राग द्वेष हो तो वहां राग द्वेष भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है, इसलिए पूर्णता अबाधित आगम ज्ञान है को प्राप्त करके उसी में कीड़ा करने के प्राप्त संस्कार से। अब बस एक व्यवहार हमने पढ़ लिया, हमने प्रदनुसार पढ़ लिया, हमने समयसार पढ़ लिया, ये पढ़ लेने की चीज नहीं है, एक दफे पढ़ लेने की चीज नहीं है। फिर मैं एक दफे कहता हूं, मैं कह चुका हूं कई दफे, मैं जब बीच बीच में प्रवचन में मुझे विकल्प आता है तो मैं ऐसा कह देता हूं कि मैं इस पर मेरा लिखने का विचार है, इस पर यदि मेरे मिलेगा इस पर लिखूंगा, तो लोग मेरी से चिढ़ जाते हैं। अब मैंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भी मैंने बहुत सोचा है कि उस पर लिखूं कि नहीं लिखूं, लोग अपनी जीभ नहीं लिखूं, लेकिन उसमें क्या रखा है, उसको एकदम तो है नहीं कि जो तो मैं ये कहता हूं कि मैं बढ़िया से बढ़िया उपन्यास लिख दूंगा भरत चक्रवर्ती पे, वो चाहे जिस पर, क्या इसे 10 गुनी मेहनत होगी इससे, लिख दूंगा, लेकिन एक दफे पढ़ोगे तुम, पढ़ोगे तो वो तुम्हारे मां बाप तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उपन्यास है, क्या पौराणिक उपन्यास है, एक दफे पढ़ेंगे। मैं ऐसी चीज क्यों लिखू जिसको रोजाना पढ़ो, ऐसी लिखू ना, समय सार का अनुशीलन लिखूंगा तो रोजाना पढ़ोगे, हजारों आदमी पढ़ेंगे। आप सोचो उपयोगिता किसकी ज्यादा है। नाम भी तुम्हें कमाना हो तो इस तरीका यही सही है। मेरा भी आत्मा का कल्याण होगा, मेरा भी स्वाध्याय भी होगा। मैं उसके लिए 35 किताबें पढ़ूंगा पहले, क्या भरत चक्रवर्ती के लिए, किसी के लिए भी है? और वहां से फिर सबसे कोई ऐसा ना कहे, कोई ऐसा ना कहे कि सब ये माथा मारूंगा, क्या उपलब्ध होने वाला है? कुछ नहीं। तो उसमें ये तत्व ज्ञान की बातें भी डाल दूंगा तो ऐसी छुटकी छुटकी होंगी कहीं, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे। पढ़ोगे तो एक फ्लो में पड़ जाओगे। ऐसी सीधी मर्म की बातें लिखूं ना, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा, घबराना नहीं। मेरे कहने का मतलब समझो कि नहीं, मैंने ये सोचा है, वो कह रहा हूं। आपका जवाब, आपके जवाब मुझे क्या, आपके जवाब में क्या दम है? आपको कह रहे कि साहब लिखो, खुशी मुस्कुरा के चुप रह गए, क्या करना? कोई जवाब देने की जरूरत है? ये कोई मैं पाबंद हूं? कोई मैंने एग्रीमेंट किया है? मैंने कर्जा लिया है तुमसे? मुझे काय का जवाब देना है? किसका जवाब देना है? किसको जवाब देना है? क्या शांति जी, जब जो लिखा जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो भगवान के केवल ज्ञान में देखा होगा, सच्ची बात तो वही है, मुझे मेरा पक्का भरोसा है, वो तो हो ही जाएगा, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता है। देखो, अब सर्वज्ञ कथित होने से पूर्णता आवादित आगम ज्ञान को प्राप्त करके उसी में कीड़ा करने के प्राप्त संस्कार से, देखो अब अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे संस्कार डालो, उसी में खेलो, खेल भी हमारा वो ही हो जाए। उसमें कीड़ा करने से, लिखा क्या नहीं लिखा, पढ़ने का तीन माथे पे सल पाड़ के ऐसे नहीं पढ़ना, मजा आ रहा पढ़ने में, मजा आना चाहिए, खेल जैसा मजा, ऐसे हमें खेलने में मजा आता है ना, ऐसा हमें ये पढ़ने में मजा आना चाहिए। कीड़ा करने से प्राप्त संस्कार से विशिष्ट, फिर संवेदन शक्ति, फिर उसको मैं फीलिंग करूं, संवेदन शक्ति रूप संपदा प्रकट करने पर, वो संवेदन शक्ति की संपदा मेरे अंदर प्रकट हो जाएगी उस स्वाध्याय से, तो सहृदय जनों के हृदय को आनंद से स्फुरायमान करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के इतने विशेषण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण माने अनुभूति, अनुभव से, अनुभव प्रमाण से। अनुभव प्रत्यक्ष की बात है, शांति दिए, केवल ज्ञान रूप प्रत्यक्ष की बात नहीं है। मत्सुद अवध ज्ञान और मन पर ज्ञान रूप प्रत्यक्ष की बात नहीं है। अब इतने तीन लाइन की जो है ना, तुम निकाल लेना, सब शास्त्री विद्वानों निकाल सकते हो। क्या कहते हैं उस वो उन्हें काय का अर्थ कर रहे थे गाथा में, क्या कहा, प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, या नहीं है इसमें, या लगा दिया अपन ने अनुवाद में, मुझे लगा कि वो गलती हो गई, ध्यान से सुनना, प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा लिखा ना, इसलिए यह लगा दिया वहां, उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से, माने प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभूति रूप, अथवा अनुमान प्रमाण से, अथवा आगम प्रमाण से, अथवा स्मृति प्रमाण से, अथवा प्रतिविज्ञान प्रमाण से, अथवा तर्क प्रमाण से, ये सब लेना, अन्य प्रमाण समूह से समस्त वस्तु समूह को यथार्थ रूप से जानने पर विपरीतादि निवेश के संस्कार करने वाला मोहोपचय अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। ये मोहोपचय क्या है? वो दर्शन मोहिनी का, ये ऐसी जैसी दीवार बनाते हैं ना, तो दीवार में वो लगाते हैं एक 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 ईंट, तो आपने कभी बनती हुई देखी होगी, तो वो नक्की कर लेता है वो जो बनाने वाला कारीगर कि इधर यहां तक आ गई दीवार, तो अब यहां निशान लगाता है, वहां लगाता है, उस पर डोरी लगाता है, उस डोरी से एक एक चय, और यहां से वहां तक पूरा लगाता है, वो उसे चय बोलते हैं, चय लगा दिए, ऐसे कर्म के चय लगे हुए हैं, अपने आत्मा से बंधे हुए हैं ना कर्म के, कर्म के उपचय लगे हुए हैं तो उन उपचयों को ढीला करता है। देखो क्या लिखा, मोहोपचय अवश्य क्षय को प्राप्त होते हैं। मोह की वे जो क्षय लगे हुए हैं वे क्षय को प्राप्त होते हैं। काहे से, स्वाध्याय से। देखो अब स्वाध्याय वो ऐसा होना चाहिए, एक दफा पढ़ लिया ऐसा नहीं, उसका रसकस निकालते रहना चाहिए, आनंद आते रहना। आनंद आता रहेगा तो आप कई कई दफे पढ़ते रहोगे। इसलिए भाव बान के अवलंबन के द्वारा दृढ़कृत परिणाम से दिव्य सुत का अभ्यास करना प्राथमिक भूमिका वालों को मोह क्षय करने के लिए उपायांतर है। ऐसा भाव ज्ञान से लेकर दिव्य ज्ञान, मन अंदर में भाव सूक्ष्म ज्ञान में शुद्ध ज्ञान का भाव ज्ञान परिपक्व हो और वहां दिव्य सुत का हम अध्ययन करें, ये करना चाहिए। ये टीका पूरी हो गई है ना, माने वो हमको तद विषयक शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उसको अध्ययन में बांचना, प्रेक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश तक ये सब पांचों अंग हैं। अब सोचो आप शांति जी के पांचों अंग जो स्वाध्याय के बताए वो कितने मार्मिक हैं। विनाशी दास ने लिखा भक्ति के काम में मंदिर में साधना ने पहले लिखवाया था, अब तो गया वो बात है। मैंने वो सारे छंद निकलवा के अलग रखवा दिए थे कि अपन को द्वारा लिखाना पड़ेंगे तो रखना, फिर वो लिखा ही नहीं द्वारा। तो उसमें भगवान की भक्ति कैसे, कभी सोचता हूं, कभी विचारता हूं, कभी अध्ययन करता हूं, कभी पूछता हूं, कभी पढ़ाता हूं, कभी बताता हूं। ये हमारी सारी सुबह से शाम तक की क्रिया ये स्वाध्याय ही है, ये भगवान आपकी भक्ति ही है। आपके प्रति हमारी इतनी भक्ति नहीं होती तो हमने दिन भर अपना इसमें कैसे लगा देते, हमारा मन भी कैसे लगता। इस स्वाध्याय में क्योंकि बहुत रूखा विषय है साहब, बहुत रूखा विषय है। अभी बहुत से लोग, अरे साहब आपका प्रवचन अब तो बहुत कैसा कठिन होता है, ये होता है, वो होता है। अब उसको दूसरे गया वहां गप्पे लगाने वाले चाहिए, हमें भी बहुत गप्पे आती हैं आपको, हम भी लगाना शुरू कर दें। लेकिन कितने दिन के लिए, कौन है आप, किसके लिए करना है, क्या करना। देखो यद्यपि आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका के अनुसार ही स्पष्ट करते हैं, तथापि वे उक्त गाथा का तात्पर्य इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। कोई भव्य जीव सर्वप्रथम तो वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों द्वारा श्रुति ज्ञान से आत्मा को जानता है। उन्होंने क्रम बता दिया कि पहले शास्त्र से पढ़े, अब उप शास्त्र से मतलब बांचना मैंने ये पढ़ना हो गया पहला, फिर पृछना, क्योंकि सब अर्थ उसकी समझ में आता जाएगा ये तो संभव नहीं है। पूरी ताकत से पहले खुद ही अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरे के भरोसे पर हम जितनी कम होती जाए उतना अच्छा है। फिर उसके बाद विशिष्ट अभ्यास के बस नहीं, अभी फिर क्या करना चाहिए, बांचना, फिर पृछना, पूछना चाहिए। टोडरमल जी ने बहुत खोल खोल के लिखा है, किससे पूछना चाहिए, जो विशिष्ट विद्वान हो उनसे पूछना चाहिए, हैं? उनसे पूछना चाहिए। और फिर वे पूछ लें तो फिर क्या करें, पूछ लें बता दें फिर क्या करें, कि उस पर विचार करो, जो पढ़ा था उस पर विचार किया था, अब जो पूछा उस पर विचार करो, फिर वो जितने स्पष्ट नहीं हो तो और फिर पूछो, फिर विचार करो उस पर कि साहब कोई अच्छा बड़ा विद्वान नहीं हुए तो साधर्मी से पूछो। साधर्मी भाई समझ गए ना, हमारे साथ जो स्वाध्याय करने वाले हैं, लेकिन उनसे पूछने का तरीका अलग होगा। ये क्या होगा कि एक कहोगे कि इस बारे में मैंने सोचा है, बहुत सोचा, लेकिन मेरी समझ में ऐसा आता है। तुमने इसके बारे में सोचा है क्या, सोचा हो तो बताओ तुम्हारी समझ में कैसा आता है। मतलब ऐसा क्यों पूछे, क्योंकि वो तुम्हारे बराबरी का है तो एकदम उसे तैयार नहीं होगा, और तुमने इतना सोचा है, उसने अभी तभी भी सोचा होगा 90% तो ये है ना, उसने अपनी बात सोची होगी जहां जो वो स्वाध्याय कर रहा होगा, तो वो तुमको कैसे बता देगा। तुम अचानक आकर कोई लेके पेड़ हमारे पास आ जाओ, तुम तो स्वाध्याय कर रहे हो, खूब मंथन किया है उसका, और हमने तो अभी 25 साल से वो देखे ही नहीं था। अब तुम हमसे पूछोगे तो सभी तैयार तो नहीं होता ना हर एक को, हम कहेंगे आप किताब लाओ देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे क्या है, लोगों को शर्म लगती है, अरे कैसे दे दें जवाब। तुम सोच समझ के आए हो तो हमको अच्छी तरह समझ के सोच के जवाब देना चाहिए ना। तो हर एक ऐसे ज्ञानी जन आपको ऐसे कहां उपलब्ध हो जाएंगे कि भाई आप सोच सोच के फिर मेहनत करेंगे और आपको जवाब देंगे। तो साधर्मी को बताओ, फिर जो वे बताएं उस पर चिंतन करो, अनुपरीक्षा। और ये कब तक करो, करते रहो जब तक तुम कुछ डिसीजन पर नहीं पहुंच जाओ। ये अनुपेक्षा में आया है, ये अब डिसीजन पे पहुंच गए, अब तो बंद के नहीं नहीं, अब आमना है, आमना है माने पाठ, अब उसे बार बार रिपीटेशन करो। क्यों कि इतनी मुश्किल से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और फिर भूल गए तो सब ऐसा ही करना पड़ेगा, इसलिए याद हो जाना चाहिए। ये पाठ करते हैं ना अपन, ये पाठ करने का मतलब ये है, अब रोजीना गाथाएं आगे पीछे पढ़ते हैं तो फर्क पड़ता है ना, क्या प्रकरण चल रहा है, क्या बात चल रही है, धीरे 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 हो जाता है, हैं? वो पाठ आमना है, पाठ उसे बोलते हैं। ये तो भक्तम्मा जी पढ़ लेना, सूत जी पढ़ लेना, उसका नाम ऐसा कोई पाठ मात नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर समझे ही नहीं, कुछ नहीं। फिर उपदेश, धर्मोपदेश, इसमें लिखा कि आदमी खुद पढ़ता है जितना समझ में नहीं आता है, जब पढ़ाता है उससे ज्यादा समझ में आता है, जब लिखता है तो उससे ज्यादा समझ में आता है। ऐसा हमारे एक कहानी चलती थी जब हम पढ़ते थे, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक जो आते थे तो संस्कृत पढ़ते थे ना, तो उन्हें संस्कृत में पत्र लिखने का शौक चल जाता था। तो अपने माँ बाप तो कुछ समझते नहीं संस्कृत, कोई की समझते हो भाग्य से तो बढ़िया, तो वे अपने पिताजी को लिखते थे, ऐसे लिखते थे क्या मतलब गलत सलत जैसा भी बनता था वैसा कोशिश करते थे, हैं? तो वो ये एक लिखा करते थे, ये लिखते थे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। समझे तो कैसा मूर्ख है, पढ़ने भेजा है, पढ़ा रहा हूं। जब वो प्रोफेसर बन गया तो लिखने लग गया अब मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाप को फिक्र हुआ कि क्या करता है, जब पढ़ता था तब लिखता था पढ़ा था, अब प्रोफेसर बन गया अब लिखता है पढ़ता। तो वास्तव में जब हम पढ़ते हैं तब तो अपने अध्यापक को पढ़ाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो पूरी तैयारी से आता है ना, तो वो योग्य विद्वान बनता है, वो योग्य विद्वान बनता है। और फिर जब हमें पढ़ाने लगते हैं तो कहते अब मैं पढ़ता हूं, अब विद्यार्थी हमें पढ़ाते हैं, भाई तुम पीछे पूछ मुझे लाओगे, सोचना पड़ेगा ना, उसे जवाब देना पड़ेगा, सीरियस होगा तो गंभीर होगा तो इस तरह से इसको बराबर। फिर धर्मोपदेश देना, शौक से देना, ऐसा नहीं कि कोई हमसे आग्रह करेगा, काय का आग्रह वाग्रह, जब जाना मंदिर में पहुंच जाना, 4 आदमी को बैठा के शुरू कर देना, आएंगे 5-7 और बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे लोग कहने लगेंगे कि हम हमारे यहां कर दो, सुनेंगे तो फिर आंगल वाले बुलाने लगेंगे, पड़ोस वाले बुलाने लगे, ऐसे जम जाना, किसी का इंतजार क्या करना, क्या ऐसे ऐसे नहीं, समाज ऐसा नहीं है कि तुम इंतजार करोगे तो तुमसे आगे बुलाएगा, अपना कर देना, जाना अपने गांव में, जम जाना मंदिर में। हमारा गांव तो बिल्कुल छोटा सा था, 5 घर जैनियों के, 5-7 घर जैनियों के थे, विक्षोप काला अक्षर भैंस बराबर कुछ नहीं समझते थे, और लौकिक पढ़ाई में भी 2री-3री क्लास पास पड़े हो तक के थे, यहां पर तो ठोकते थे जाकर, क्या कहां हमें कहां मिलेगा मौका, अपने गांव में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा, जाना करना। कोई भव्य जीव सर्वप्रथम तो वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों द्वारा श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है, उसके बाद विशिष्ट अभ्यास के बस से परम समाधि के समय, देखो वो मतलब ध्यान ध्यान के समय ध्यान माने ये है ध्यान, ये ध्यान ऐसा करते हैं, ये तो बैठ के नाटक करते हैं ध्यान का समय, रागादि विकल्पों से रहित मानस प्रत्यक्ष से, वही अनुभव की बात कर रहे हैं, उसी आत्मा को जानता है अथवा उसी प्रकार के अनुमान से जानता है, जिस प्रकार सुखादि के समान विकार रहित सुसंवेदन प्रत्यक्ष से यह जाना जाता है कि शरीर में ही एक शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, उसी प्रकार यथासंभव आगम अभ्यास से उत्पन्न प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से अन्य पदार्थ भी जाने जाते हैं। इसलिए मोक्षार्थी भव्यों को आगम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये सब आचार्यों के वचन हैं, अमरचंदाचार्य का, जयसेन का, कुंद कुंद की, वो कह रहे हैं हमके स्वाध्याय करने के लिए। हो गया ना समय आज का, तो अभी कल बाकी जो बात कहना है कल कहूंगा।
स्वरूप